लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, जीवन में सच्चाई का साथ देने, सच्ची बातों को बोलने और घोषित करने हेतु हिम्मत की जरूरत होती है, जो हर किसी के वश की बात नहीं है। सच्ची बातों को लोगों के समक्ष रखना और सत्य का पक्ष लेते हुए उसका साक्ष्य देना और कुछ नहीं बल्कि आग से खेलना है, जहां हम कितने ही व्यक्तियों को आग से जलता और कई बार तो जलकर भस्म होता देखा है। सत्य का साक्ष्य देने और सही बातों को बोलने हेतु हमें स्वयं में आत्मविश्वास की जरूरत होती है, और यह आत्मविश्वास हमारी स्वयं की उपज नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए उस पवित्र आत्मा का वरदान और प्रेरणा है जो हम में निवास करते हैं। यह वही सत्य का आत्मा है जिसे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त अपने चेलों के संग साझा करने की बात कहते हैं, जो हमें अपने जीवन और कार्यों में मुक्ति की अनुभूति लाते हैं। आइए हम पास्का के तीसरे रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की परख करें कि क्या हम सत्य के आत्मा से प्रेरित होकर अपने जीवन को संचालित करते हैं, क्या हम उनकी प्रेरणा को देखने और समझने का प्रयास करते हैं, जो हमें सदैव हृदय की गहराई में सत्य का साक्ष्य देने को प्रेरित करता है। सत्य का आत्मा किन रूपों में हमारे लिए प्रकट किया जाता है, जिसे हम उसका अनुसरण करते हुए अपने को उसके जीवन में सम्मिलित कर सकें, जो हमें निर्भय बनाता और जीवन की सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता है। जलपान करने के बाद यीशु ने सिमोन पेत्रुस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेत्रुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चराओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगी और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचनों का श्रवण हमें यीशु ख्रिस्त के प्रति विश्वास और निष्ठा में पुख्ता होने को मदद करे, जो हम में से प्रत्येक जन से यह सवाल करते हैं कि हम उन्हें कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि वे हमें अपने कार्यों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी प्रदान करना चाहते हैं। श्रोताओं, प्रेरित चरित से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए पुनर्जीवित प्रभु येसु ख्रिस्त के भय विहीन साक्ष्य देने की बात घोषित करता है। येसु ख्रिस्त के पुनरुत्थान उपरांत प्रेरित अपने को उत्साह, जोश और विश्वास से विभूषित पाते हैं। वे अपने गुरुवर के संग हुई घटनाओं का जिक्र खुले आम लोगों के बीच करते और उनके मृत्यु में से जीवित होने की बात घोषित करते हैं। यह सुसमाचार है जो ख्रिस्तियता का सार है, जिसे यीशु के प्रथम शिष्यों ने अपने निर्भयता, पूर्ण आस्था और विश्वास में घोषित करते हुए उस बात का साक्ष्य दिया कि यीशु ख्रिस्त जो मार डाले गए थे मृत्यु में से जी उठे हैं। वही यहूदियों के महायाजक और फारिसी प्रेरितों को फटकारते हुए सुसमाचार की घोषणा नहीं करने को कहते हैं, लेकिन पेत्रुस विश्वास और साहस के साथ उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना अधिक उचित है। वे भयभीत हुए बिना सत्य को घोषित करते हैं कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिला दिया है। यीशु के नाम पर उपदेश ना देने की कठोर आज्ञा भी उन्हें अपने विश्वास से विचलित नहीं करती है। श्रोताओं, प्रेरितों के इस निर्भय साक्ष्य में हम पवित्र आत्मा की शक्ति को पाते हैं, क्योंकि सत्य का ज्ञान और सत्य की घोषणा हमारे कार्यों के प्रतिफल नहीं है, बल्कि हम ऐसा करने के योग्य इसलिए होते हैं क्योंकि इसके लिए हमें पवित्र आत्मा प्रेरित करता है। वे हमें अपने हृदय की गहराई में अपनी बातों को बोलने हेतु उत्साहित करते हुए प्रेरणा से भर देते हैं। इस भांति हमारे दैनिक जीवन में सत्य का साक्ष्य, जो बहुधा हमारे लिए अपमान और दूसरों के द्वारा प्रताड़ना का शिकार बनाता है, हमारे जीवन जीने के उत्साह और खुशी को हम में कम नहीं करता है। श्रोताओं, प्रकाशना ग्रंथ से लिए गए आज के दूसरे पाठ में हम संत योहन को उन लोगों के विशाल जनसमूह को दिव्य दर्शन में देखता पाते हैं जिन्होंने अपने भौतिक जीवन में ईश्वर के मेमने का साक्ष्य दिया और जो अब स्वर्गीय अनंत आनंद में उनकी महिमा में अपने को सम्मिलित पाते हैं। यह हमारे लिए पुनरुत्थान की सत्यता को देखने और समझने में मदद करता है कि मानव का एक अलग जीवन है जो इस धरती का नहीं बल्कि उस स्वर्ग राज्य का है जिसके द्वार को यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए स्वयं अपने पुनरुत्थान में खोला है। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने उसी स्वर्ग के कुंजों को यीशु ख्रिस्त के द्वारा पेत्रुस को सौंपे जाते हुए सुना। इसके पहले कि यीशु पेत्रुस को अपने कार्यों की जिम्मेदारी सौंपते, वे सीधे तौर पर उनसे यह सवाल करते हैं कि क्या वह अपने स्वामी को बाकी अन्य शिष्यों की तुलना में अधिक प्रेम करता है। यीशु उनसे यह सवाल तीन बार पूछते हैं, जो पेत्रुस के लिए दुखदायी होता है। यह सवाल केवल पेत्रुस के लिए नहीं बल्कि हम सभी विश्वासियों के लिए भी है जिन्हें यीशु विभिन्न रूपों में अपनी रेवड़ की देखरेख करने हेतु एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। हम जहां कहीं भी हैं और जिस किसी कार्य में अपने को संलग्न पाते हैं, वे हमारे लिए ईश्वर से दिए गए कार्य हैं जिनके द्वारा हम मुक्तिदाता के लिए अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। हम अपने कार्यों के द्वारा उस ईश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया है। आइए हम पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि हम अपने जीवन के कार्यों को ईमानदारी से पूरा कर सकें, जो हमारी ओर से उनके लिए सत्य का साक्ष्य होता है, जिससे हम अपने जीवन के अंत में उनकी महिमा में आनंद के भागीदार बन सकें।
किसने दिया, ये जीवन है उसका। प्रभु हमारा है जीवन आधार, उसकी कृपा है अनंत अपार। प्रभु हमारा है जीवन आधार, उसकी कृपा है अनंत अपार।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। स्पानी टेलीविजन नेटवर्क एसने के संस्थापक और पत्रकार नोएल डायस को 2021 में दी एक भेंट वार्ता में संत पापा फ्रांसिस ने प्रेरितवर संत पेत्रुस की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अभिलाषा व्यक्त की थी कि कलीसिया विश्व के बीच में एक विनम्र सेवक बन सके। वैटिकन स्थित संत मर्था प्रेरितिक आवास में दी उक्त भेंट वार्ता में संत पापा फ्रांसिस ने उस अवसर पर कलीसिया संबंधी कुछ गूढ़ विषयों की चर्चा की थी। इनमें ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, कमजोर और पापी होने का बोध, पुरोहितों को सभी की सेवा में समर्पित करने का नवीकृत आह्वान, समकालीन शहीदों के प्रति उनका सम्मान और आप्रवासियों के प्रति उनकी चिंता शामिल थी। संत पापा फ्रांसिस के साथ हुई इस भेंट वार्ता को एसने टेलीविजन नेटवर्क ने शुक्रवार को प्रकाशित किया। प्रेरितवर संत सीमोन पेत्रुस की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा कि जन समुदाय के बीच में से प्रभु येसु ने सीमोन पेत्रुस को चुना था ताकि पेत्रुस अपने रेवड़ के लिए एक अच्छे मेषपाल बन सकें और ईश वचन के प्यासों को ईश्वर का वचन सुना सकें। संत पापा ने कहा कि जिस प्रकार प्रभु येसु ने पेत्रुस को बुलाया था, इसी प्रकार वे वर्तमान युग के समस्त पुरोहितों का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने लोगों के बीच ईश्वर का वचन सुनाएं तथा उनकी सेवा में स्वतः को समर्पित कर दें। उन्होंने कहा कि येसु ने अपने शिष्य होने के लिए सामान्य लोगों में से सीमोन पेत्रुस को चुना और उन्हें वह शक्ति प्रदान की जिसमें चीजों को बदलने की अपार क्षमता थी। उन्होंने कहा कि पेत्रुस जानते थे कि वे एक सामान्य व्यक्ति थे, पापी थे और उनकी क्षमताएं सीमित थीं। इसीलिए वे कहते हैं, हे प्रभु, मुझसे दूर हो जाइए क्योंकि मैं एक पापी हूं। उन्होंने कहा कि यह जानते हुए कि वे एक सामान्य व्यक्ति थे, पेत्रुस लोगों के साथ रहते थे, प्रभु की बात सुनते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। संत पापा ने कहा कि पेत्रुस ने अपनी तुच्छता और शून्यता को पहचाना, इसी कारण वे युग युगांतर के लिए प्रभु येसु ख्रीस्त के उत्तराधिकारी बने। संत मत्ती रचित सुसमाचार पाठ का स्मरण दिलाते हुए संत पापा ने येसु के प्रश्न को दोहराया, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तब शिष्यों का उत्तर था, वे कहते हैं कि आप एक भविष्यवक्ता हैं, कि आप यूहन बपतिस्ता हैं, कि आप मुर्दों में से जी उठे हैं। इस पर मानो सीमोन पेत्रुस को चुनौती देते हुए प्रभु येसु कहते हैं, लेकिन तुम पेत्रुस, तुम क्या कहते हो? इसके उत्तर में पेत्रुस कहते हैं, आप ईश्वर हैं, ईश्वर के पुत्र। इसी के जवाब में येसु ख्रीस्त पेत्रुस से कहते हैं, तुम सीमोन हो, लेकिन अब से तुम पेत्रुस अर्थात पत्थर कहलाओगे, जिस पर मैं अपनी कलीसिया का आधार रखूंगा। संत पापा ने कहा कि पेत्रुस द्वारा विश्वास की स्वीकारोक्ति ने ही उन्हें इस धरती पर प्रभु ख्रीस्त का प्रतिनिधि बना दिया। उन्होंने कहा कि पेत्रुस ने अपना सारा अस्तित्व दांव पर लगा दिया, इसीलिए यीशु पेत्रुस से कहते हैं, तुमने जो कहा वह किसी विज्ञान के द्वारा नहीं बल्कि पिता ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें बताया है। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में 7वें नोवेम 42 ख्रीस्तियाग के अवसर पर शुक्रवार को प्रवचन करते हुए कार्डिनल क्लाउडियो गुजेरोत्ती ने विश्वासियों से आग्रह किया कि वे पूर्वी रीति की कलीसियाओं के भाइयों और बहनों का स्वागत करें तथा उन्हें अपने विश्वास में सुदृढ़ रहने में सहायता करें। उन्होंने इस अवसर पर विशेष रूप से पास्का सोमवार के दिन संत पापा फ्रांसिस के गुजर जाने के प्रकाश में प्रभु येसु ख्रीस्त के पुनरुत्थान पर चिंतन किया। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि ख्रीस्त का पुनरुत्थान मानव स्वभाव में निहित घटना नहीं है बल्कि यह ईश्वर की ओर से उनके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आने वाली अभूतपूर्व घटना है। उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही मनुष्य ईश्वर के दत्तक पुत्र बनते हैं जो पूरी सृष्टि के साथ उन्हें पुकारते हैं अब्बा पिता। तथापि उन्होंने कहा, आज सृष्टि और मानव व्यक्ति का बहुत कम महत्व है। इस तथ्य पर उन्होंने जोर दिया कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अंतर संबंध है। उन्होंने कहा कि सृष्टि मानवता की जीवन यात्रा में एक साथी है जो हमारे साथ एकजुटता में है और बदले में हमारी एकजुटता चाहती है। उन्होंने कहा कि यह संत पापा फ्रांसिस का बहुत प्रिय विषय था। अपने प्रवचन में कार्डिनल क्लाउडियो गुजेरोत्ती ने पूर्वी और लातिनी रीति की कलीसियाओं के बीच भ्रातृत्व भाव पर बल देते हुए पूर्वी ख्रिस्ती आध्यात्मिक समृद्धि की ओर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने ख्रिस्तिया को एक ऐसा क्षण बताया जिसमें हम पूर्वी रीति की कलीसियाओं में अपने भाइयों और बहनों का स्वागत करने और उन्हें अपने विश्वास में सुदृढ़ रहने में मदद करने के लिए खुद को पुनः प्रतिबद्ध करें, विशेष रूप से अब जब उनमें से बहुत से लोग अपनी प्राचीन मातृभूमि अर्थात पवित्र भूमि से भागने के लिए मजबूर हैं। वैटिकन में शुक्रवार को संपन्न कार्डिनलों की 8वीं आम सभा में सुसमाचार प्रचार, भ्रातृत्व, धर्माधीक्षी धर्म सभा और एकता विषयों पर चर्चा की गई। परम धर्म पीठीय प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने शुक्रवार सुबह संवाददाताओं को बताया कि भावी संत पापा के चुनाव हेतु आगामी दिनों में होने वाले कार्डिनल मंडल के सम्मेलन की तैयारी के लिए शुक्रवार को संपन्न 8वीं आम सभा में 180 से अधिक कार्डिनल उपस्थित थे जिनमें 120 परमाधीक्षी चुनाव में मतदान के योग्य हैं। धर्म सभा के दौरान 25 प्रभाषण हुए। चर्चा के विषय थे सुसमाचार प्रचार, संत पापा फ्रांसिस के परमाधीक्षी काल का केंद्र बिंदु, कलीसिया सुसमाचार प्रचार करने वाला भ्रातृत्वपूर्ण समुदाय, सुसमाचार का संचार करने की आवश्यकता विशेष रूप से युवा लोगों तक, पूर्व की कलीसियाएं उनकी पीड़ा और उनका साक्ष्य, पल्लियों से लेकर रोमन कूरिया तक सभी स्तरों पर सुसमाचार के संचार को प्रभावी बनाने का प्रश्न, सुसमाचार के प्रकाश में साक्ष्य और एकता का कर्तव्य, आपसी प्रेम जिससे यह सब जाने कि तुम मेरे शिष्य हो, और धन विधि की केंद्रीयता, कलीसियाई कानून का महत्व, धर्माधीक्षी धर्म सभा, मिशन और लोक धर्मियों की भूमिका। और इसी बीच वैटिकन ने बताया कि पूर्व वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन का स्वास्थ्य बिगड़ने से संबंधित समाचार बिल्कुल निराधार है। रोम के एक समाचार पत्र द्वारा फैलाई गई तथा अमरीकी सूत्रों द्वारा पुनः प्रकाशित की गई यह सूचना झूठी है कि वैटिकन के पूर्व राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन को कार्डिनल मंडल की आम सभा के दौरान कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो गई थी और वे काम के दौरान बीमार पड़ गए थे, यहां तक कि डॉक्टरों या नर्सों का हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया था। एक पत्रकार के प्रश्न का जवाब देते हुए परम धर्म पीठ के प्रेस प्रवक्ता मत्तेओ ब्रूनी ने इस खबर का खंडन किया है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।